ओम शांति। सभी ठंडी का अच्छा अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ना? आबू की ठंडी भी सबको अच्छा योगी बना देती है। सब आकर के अंदर बैठ जाओ। बाबा के घर में आप सब योग तपस्या करने के लिए आए हैं। इतनी दूर दूर से, कहां संभलपुर उड़ीसा, दिल्ली, नरेला, अमलनेर, कहां महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, इतने सब भाई बहने आज बहुत सुंदर इस ज्ञान सरोवर के सभागार में बैठे हैं। बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है। और ब्राह्मण जीवन जो इतनी श्रेष्ठ जीवन है, हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण आत्माएं, जिनका जन्म ही अलौकिक रीति से हुआ है, मर्जीवा जीवन, दिव्यता संपन्न जीवन, इसमें समस्याएं हैं क्या कोई? मैं समझता हूं जो सच्चे पक्के ब्राह्मण बन गए हैं उनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं है। समस्याएं उनके सामने आती हैं जो अभी तक पूरा मरे नहीं है, मर्जीवा नहीं बने। तो हम सबको बाबा ने नया जन्म दिया, अपना बच्चा बनाया, पालना दी, इतनी ऊंची शिक्षाएं दी, पढ़ाया, योग्य बनाया और कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिनका मार्गदर्शन स्वयं भगवान कर रहे हों, उनके सामने क्या समस्याएं आएंगी? समस्याओं का जन्म केवल अपने कमजोर मन से होता है। जो आत्माएं स्वयं को सर्वशक्तियों से संपन्न नहीं बना पाई हैं, उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे वो संबंध संपर्क में अपने स्वभाव संस्कार के कारण, कोई हिसाब किताब के कारण, या कोई भी कलयुग के अंदर वायुमंडल तमोगुणी है, आत्माएं जो अति विकारों में लिप्त हैं, प्रकृति के द्वारा, आत्माओं के द्वारा, भटकती हुई आत्माओं के द्वारा, या अपने कमजोर संस्कार स्वभाव के द्वारा अनेक प्रकार की समस्याओं की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर हम इन सब का समाधान करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा तो बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हें केवल अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करना है, तुम तो विश्व की समस्याओं का समाधान करने वाले हो। सारी दुनिया में ही अनेकानेक समस्याएं हैं, हर कदम में समस्याएं हैं, और आप भी कहेंगे मेरे आगे भी हैं, तो समाधान कौन करेगा? इसलिए ये स्मृति सदा रहे कि हम सब समाधान स्वरूप आत्माएं हैं। अगर कोई बात आती भी है, सबसे पहले तो ब्राह्मण जीवन के अंदर चलते चलते कई प्रकार के स्वभाव संस्कार का टकराव होता है। जो पिछले कुछ रहे हुए हिसाब किताब हैं वो सामने आ जाते हैं। जिस स्थान पर हम आते हैं, रहते हैं, उनके साथ ही कोई हमारे ऐसे संबंध रहे हैं जो हम अभी भी मिले हैं आपस में, और कहीं पर अति प्यार हो जाता है और कहीं पर अति टकराव हो जाता है। दोनों ही परिस्थितियां हैं जो समस्याओं को जन्म दे देती। अगर कहीं किसी आत्मा से बहुत अटैच हो गए, रहते रहते बहुत एक दूसरे के स्नेह में, बंधन में बंध गए, तो भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लोगों की नजरों में आता है ये क्या कर रहे हैं, इनका अटैचमेंट है आपस में। प्रभावित हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। और अगर हम एक साथ रहते हैं, मिलजुल करके नहीं रहते हैं, आपस में थोड़ी थोड़ी बातों में टकराव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सब बाबा के बच्चे बैलेंस से अगर चलते हैं, बैलेंस युक्त हमारी जीवन है, और बाबा ने बहुत सारे बैलेंस हमें सिखाए हैं। जैसे सबसे अच्छा बैलेंस जो बाबा का खुद का है, भगवान का भी है, वो है न्यारी और प्यारेपन का। इतना प्यार का सागर है, बच्चों के बीच में आता है तो प्यार लुटा देता है। सब समझते हैं बस बाबा तो मेरा है, लेकिन प्यार देते, प्यार का अनुभव कराते, एक सेकंड में न्यारा बन जाता है। कोई के प्यार में फंसता नहीं है और अपने में भी फंसने नहीं देता है। तो एक न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रख करके अगर हम परिवार में चलते हैं तो कहीं पर भी कोई समस्या पैदा नहीं होती। अति न्यारे हो गए तो लोगों को डर लगने लगता है, कहीं ये घर न छोड़ दे, परिवार न छोड़ दें, ये ब्रह्मा कुमारी में न चले जाएं। सामाजिक बंधन, सामाजिक जवाबदारियां जो हैं वो कहीं इनसे छूट न जाएं, ये बहुत न्यारे न्यारे रहते हैं। लोग कुमार कुमारियों को जब ऐसा देखते हैं तो फट से कहते हैं इसकी शादी करो, नहीं तो ये कहीं भाग जाएगा। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी विधियां बताई हैं कि जितना न्यारे रहते हो उतना प्यारे हो करके रहो। न्यारे रहना है देह अभिमान से, परिवार से न्यारे नहीं हैं, सेवाओं से न्यारे नहीं हैं, संबंधों से न्यारे नहीं हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए हम देह अभिमान से, दैहिक दृष्टि से, दैहिक वृत्ति से उपराम हैं, न्यारे हैं। तो जितना देह अभिमान समाप्त होता जाता है, आत्मिक स्थिति में हम स्थित रहते हैं, उतना ही हम सबके प्यारे बन जाते हैं। और वो प्यार अलौकिक प्यार है, मुंह वाला प्यार नहीं है, अटैचमेंट वाला नहीं है, एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं, मददगार हैं। लेकिन ऐसे नहीं, इसके बिना काम ही नहीं चलता है। जहां पर हम एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं और आधार खिसकता है तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को संबंध दिए हैं, लेकिन कहा है बच्चे संबंध बंधन न बन जाए, इस पर ध्यान देना। सबके सहयोगी बनो, स्नेही बनो, साथ दो, सहयोग दो, लेकिन फंस करके नहीं, आधारित होकर के नहीं। न किसी को अपना आधार बनाना और न किसी का आधार बन जाना, नहीं तो आधार खिसकेगा तो वो भी चला जाएगा। मुझे याद आता है अपने यज्ञ के अंदर, मुझे भी 50 साल पूरे हो रहे हैं मधुबन में रहते, जिन्होंने आत्माओं को आधार बनाया, चाहे वो निमित्त को ही बनाया। दीदी हमारी बहुत इस यज्ञ की अनन्य थी, दीदी मनमोहिनी, बाबा के बाद, मम्मा के बाद ही दीदी ने यज्ञ को संभाला और बहुत स्नेह दिया, लव और ला का बहुत अच्छा बैलेंस रखा, बहुत अच्छे ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में चलती रही और सबको चलने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणाएं देती रही, बहुत सिखाया। लेकिन कई लोग, बाबा कई बार कहते हैं ना, आत्माओं के मुरीद बन जाते हैं। मुझे याद आता है कुछ आत्माएं ऐसी थी, मम्मा के समय जब मम्मा अव्यक्त हुई तो वो ज्ञान से टूट गई, मम्मा चली गई, अब कौन संभालेगा, मम्मा ऐसे कैसे चली गई, बाबा के पहले कैसे चली गई, बड़े प्रश्नों में उलझ गए लोग और ज्ञान से विमुख हो गए। दीदी के अव्यक्त होने के बाद, दीदी के समय ही जिनका बहुत प्यार हो गया दीदी से, बहुत स्नेह में आ गए, दीदी ही सब कुछ है, वो दीदी के अव्यक्त होने के बाद या तो डिप्रेशन में चले गए या ज्ञान से चले गए या शरीर ही छोड़ दिया, टेंशन में आ गए। इसलिए ध्यान देना, ये सब समस्याएं जो पैदा हो रही हैं उसका कारण है अति में जाना। अति स्नेह रखोगे तो भी वो समस्या खड़ी करेगा, और अति न्यारे बनोगे तो भी समस्या पैदा होगी। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे न्यारे और प्यारेपन का बहुत अच्छा बैलेंस रख करके चलें। दूसरा, सेवाएं बाबा ने हम सब की उन्नति के लिए दी हैं, और हम कहते भी हैं कि ब्राह्मण आत्माओं का श्वास जो है वो सेवा है। सेवा के बिना ब्राह्मण नहीं रह सकते। मुझे भी लगता है कि सेवा के बिना हम कैसे रह सकते हैं, सेवा तो चाहिए ही। अभी लॉकडाउन में कई बार कई लोग सेवा से फ्री हुए तो बेचारे उलझ गए, क्या करना चाहिए, कब तक योग लगाएंगे, कब तक अकेले में बैठे रहेंगे। हम लोगों को इसका पता नहीं चला क्योंकि बड़ा परिवार था, और साथ साथ सेवाएं हमारी और बढ़ी इंटरनेट के माध्यम से, इधर क्लास इधर क्लास, ये करना ये करना, तो पता नहीं चला लॉकडाउन कैसे पूरा हो गया। लेकिन जो छोटे छोटे घरों में रहे, कमरे में बंद रहे, न बाहर जा सकते हैं, न सेवा पर जा सकते हैं, न नौकरी पर जा सकते हैं, वो कई लोग तो अंदर अंदर घुटते रहे, क्या करना चाहिए, क्या करें। प्लानिंग अगर नहीं है तो उनके लिए लॉकडाउन बहुत बड़ी समस्या बन गई। लेकिन प्लानिंग वाली बुद्धि वाली आत्माएं उस समस्या में भी समाधान ढूंढा और बहुत अच्छी अपनी उन्नति की, बहुत अच्छा योग किया, बहुत अच्छी स्टडी की, प्लानिंग की, कई नए नए प्रोजेक्ट तैयार कर दिए। ये अपने को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हालतें तो दिन प्रतिदिन बिगड़ रही हैं, और आप कहो कोई हमारे आगे समस्या ही ना आए, संभव नहीं है, आएंगी। लेकिन समाधान खुद को ही खोजना है, दूसरा कोई समाधान देने वाला नहीं है। बाबा ने समाधान स्वरूप बनाया है ज्ञान से, ज्ञान युक्त आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा के आगे हर समस्या का समाधान दिखाई देता है। वो पहले से ही उस समस्या को परख लेता है, परख करके आने वाली समस्या को सहज पार कर लेता है, कैसे पार हो जाएंगे हम। कई हैं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, आगे कैसे होगा, ये होगा वो होगा, कई प्रश्नों में अपने आप को उलझा देते हैं। तीन प्रकार की पर्सनैलिटी अगर आप अपने जीवन में ले आओ तो मैं समझता हूं कभी भी कोई समस्या आपको रुकावट नहीं डाल सकती, आएंगी समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है रूहानियत की पर्सनैलिटी, जो आज हम बाहिमुखी बन गए हैं, देह अभिमान में रहते हैं, देह को देखते हैं, देह के बारे में चिंतन करते हैं, और देहधारियों से हम फंसे हुए हैं। एक देहधारी जाता है, अचानक शरीर छोड़ देता है, तो उसके पीछे कितना समय, कितनी एनर्जी, कितने संकल्प हम सब गंवा देते हैं, और उसके कारण इतना दुख परेशानी टेंशन पैदा होता है, जो आधारित होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और अचानक कोई चला जाता है तो सारा समय रोते रहते हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे रूहानियत की पर्सनैलिटी बनाओ। ये आत्माएं, ये रूह अपना अपना खेल खेलने आई हैं, उन्होंने शरीर धारण किया है, हमें अपनी अंतर्मुक्ता में, अपने रूहानियत में, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है। हम आत्माएं तो अनादि अविनाशी हैं, न मरते हैं, न कटते हैं, न जलते हैं, और कोई भी आत्मा जो इस शरीर में आई है, शरीर तो एक न एक दिन छूटना ही है, कोई इसे छूट नहीं सकता। इसलिए बहुत न्यारे प्यारे बन करके रूहानियत को धारण करके हर एक की रूह से प्यार करो। रूह आत्मा को कहते हैं, रूह खुशबू को कहते हैं। जो आत्मा की विशेषताएं हैं, खुशबू है उसके अंदर, जो उन विशेषताओं को ग्रहण करो, उन विशेषताओं को देखो, और साथ साथ आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, तो जितना आप रूहानियत को बढ़ाते जाएंगे उतना कई प्रकार की जो दैहिक संबंधों के आधार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं से सहज मुक्त हो जाएंगे। तो पहली पर्सनैलिटी, पहला ज्ञान, पहली समझ बाबा ने हम बच्चों को यही दी कि आप एक रूह हैं, आप एक आत्मा हैं, जो अजर अमर अविनाशी हैं, इस कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के शरीर के द्वारा कर्म करा रही हैं, कर रही हैं। इस पाठ को बहुत पक्का करना, अगर समस्याओं से मुक्त होना है तो, नहीं तो समस्याएं तो देह अभिमान के कारण कई आ रही हैं। एक विकार को जीतते हैं दूसरा उत्पन्न हो जाता है, दूसरे को जीतते हैं तीसरा आ जाता है, और कई लोग तो सोचते हैं कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। कई ब्राह्मण भी कह देते हैं, अरे भाई अगर गुस्सा नहीं करते हैं तो थोड़ा सीरियस तो रहना पड़ता है ना, थोड़ा आंख तो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। और बाबा कहता है अगर एक को प्यार किया, एक को बुलाया तो दूसरा उसके साथ साथ आ जाएगा, इसलिए पांचों पर संपूर्ण विजय चाहिए, नहीं तो एक जाएगा दूसरा आएगा। तो हम सब बाबा के बच्चे इन विकारों की, वर्तमान समय जो विकारी वातावरण के बीच में हम सब रह रहे हैं, उन विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है। ऐसे नहीं एक पर किया है दूसरे पर हो जाएगी, बाबा कहता ऐसे नहीं हो सकता। आपको अटेंशन दे करके देह भान को गलाना है। इन पांचों विकारों की उत्पत्ति का कारण है देह अभिमान, और देह भान में रहते रहते आत्मा काम विकार के अधीन हुई, फिर काम की इच्छाएं अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध का कारण भी कोई चीज नहीं मिली, कोई प्राप्ति नहीं हुई, कोई ने मेरा कहना नहीं माना, लोभ वृत्तियां अंदर हैं, लोभ का जन्म क्रोध से हुआ, क्रोध से लोभ का जन्म हो गया। और ऐसे ही अहंकार, कोई थोड़ी सी सेवाएं करता है, कोई काम करता है, कोई पद पोजीशन मिल जाता है, कोई नाम मानसान हो जाता है, उसको अहंकार आ जाता है, मेरे जैसा कोई नहीं। यही पांचों विकार आत्मा को अनेक समस्याओं में इस समय बांधे हुए हैं। जो समस्याएं हैं इनका कारण तो विकार ही हैं, और उन विकारों का कारण देहमान ही है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को अगर समाधान स्वरूप बनना है तो ध्यान देना, जितना आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करेंगे, रूहानियत में रहने की प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी पर्सनैलिटी है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं जो बहुत रायल हैं, बहुत आंतरिक मन वचन कर्म से पवित्र हैं, भले शरीर की पर्सनैलिटी कैसी भी हो, शरीर कैसा भी हो, लेकिन अगर आत्मा बड़ी शुद्ध है, पवित्र है, सदा शुभ सोचती है, शुभ बोलती है, शुभ देखती है, उसकी विचारधाराएं बड़ी पवित्र और शुद्ध हैं, तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनेक समस्याओं से बचा रही है। जहां पर जिस स्थान पर समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं, वहां पर कहीं न कहीं प्योरिटी की सब्जेक्ट में ढीलापन है। आप सब इस बात को गहराई से समझना, जहां अशुद्धि है, अशुद्धि समस्याओं को जन्म देती है। जैसे मंदिर के अंदर कभी कोई भूत प्रवेश नहीं करता, खंडहर जहां होता है, जहां खालीपन होता है, वहां भूतों का वास होता है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत प्रवेश कर रहे हैं, विकारों की जो उत्पत्ति हो रही है, उसका कारण है तुमने अपने मन को मंदिर नहीं बनाया है। मंदिर माना जहां शुद्धता है, पवित्रता है, स्वच्छता है। मन अगर मंदिर है, मंदिर में कभी भी ये भूत प्रवेश नहीं कर सकते, विकारों के भूत। उन भूतों की बात तो मैं कर नहीं रहा हूं, उस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन ये जो विकारों के भूत सबके अंदर प्रवेश हैं और अनेक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं, इनसे बचने का केवल एक साधन है, अपने मन को बड़ा शुद्ध पवित्र मंदिर बना लो। इसमें रोज ज्ञान और योग की धूपवास करो। जहां ज्ञान और योग की धूपवास हो रही है, अच्छा चिंतन चल रहा है, अच्छे विचार है, शुद्ध विचारों में जो आत्माएं रमण करती हैं, उनके आगे कोई समस्या नहीं है। जहां अशुद्ध विचार चलते हैं, कोई भी समस्या जो क्रिएट होती है वो व्यर्थ और अशुभ सोचने से होती है। व्यर्थ सोच रहे हैं, मतलब नहीं है, चल रहे हैं संकल्प, और जब संकल्प व्यर्थ चलते हैं तो ये जो आभा मंडल है, जो ओरा है, वो खंडित हो जाता है। अगर मनुष्य आत्माएं किसी भी रूप से, किसी का अटैक होता है किसी के ऊपर, कोई अशुद्ध आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, कोई व्यक्ति कुछ गलत बोल जाता है, कोई ईर्ष्या द्वेष करता है, कोई हमारी ग्लानि करता है, कोई हमें गाली देता है, अगर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक मूल कारण, इस पर थोड़ा अंडरलाइन करना, थोड़ी गहरी बात आपको सुना रहा हूं, उसका मूल कारण है हमारे ही कमजोर अशुद्ध विचार। हमारी जो विचारधाराएं हैं, अगर उसमें अशुद्धता है, अस्वच्छता है, संपूर्ण पवित्रता नहीं है, तो अपवित्र ओरा जो कलयुगी मनुष्यों का है, अगर हमारा भी ऐसा ही बन जाएगा तो कई प्रकार की समस्याएं प्रवेश करेंगी। अगर हम समस्या मुक्त बनना चाहते हैं, पहले हम बने तब दूसरों को बनाएंगे, क्या करेंगे, बहुत शुद्ध पवित्र विचारों में रहने की आदत डालो। इसीलिए बाबा ने अपने बच्चों के लिए कंपलसरी किया है कि रोज सवेरे की मुरली जरूर सुनो। सुनते हो सभी? सुनते हो सभी? हाथ उठाओ, देखें तो कौन कौन सुनते हैं। सच्चा उठा रहे हैं ना? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों मुरली सुनाई जाती है, रोज क्यों सुननी? क्योंकि इससे हमारी विचारधाराएं बड़ी पवित्र और शुद्ध बनती हैं। जो भी बातें, समस्याएं आने वाली होती हैं, उनका समाधान मुरली के अंदर होता है। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा का मुरली पर ही ध्यान नहीं है, सुनता है, एक नियम पालन करता है, अभी अभी सुना, अभी अभी भूल गया, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, उस पर स्वभाव अपने स्वरूप में लाने का अभ्यास नहीं किया, समस्या आई उलझ गया, क्या करूं कैसे करूं, प्रश्नों में उलझ गया। जहां प्रश्न है मन के अंदर, जहां उलझने हैं, जहां प्रश्न है, वहां पर प्रसन्नता की पर्सनैलिटी नहीं बन सकती। मैं आपको जो तीन पर्सनैलिटी बता रहा हूं, ध्यान देना, एक है रूहानियत, दूसरी है प्योरिटी, पवित्रता मन वचन कर्म की, और तीसरी है अंदर बाहर की प्रसन्नता। जो बहुत प्रसन्न चित आत्माएं रहती हैं, खुशनुमा रहती हैं, खुश मिजाज रहती हैं, उनके सामने किसी भी समस्या का वार नहीं होता। प्रसन्नता से, अपनी झलक से, अपनी खुशनुमा चेहरे से अनेकों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। आज सारी दुनिया के अंदर उलझन है, प्रश्न है, परेशानियां हैं, कोई के आगे भी अपना भविष्य निश्चित नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, पता नहीं कल क्या होगा, इतने डरे हुए हैं, और डरे ही नहीं हैं, सबको डरा रहे हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बाबा के बच्चे एकदम निश्चिंत हैं। क्यों निश्चिंत हैं? क्यों निश्चिंत हैं? है निश्चिंत कि नहीं है, चिंता है कोई? क्योंकि जानते हैं अभी जो होने वाला है वो बहुत अच्छे से अच्छा होने वाला है। हमारा विश्व वो स्वर्ग, स्वर्णिम विश्व, स्वर्ग सतयुग अब आने वाला है। इसलिए कलयुग को तो जाना ही है, और जाने के लिए ये सब समस्याएं हैं, सब प्रकार के विघ्न हैं, रुकावटें हैं, और विकारों के कारण हैं, वो विकारण भी जानते हैं। तो जब कलयुगी दुनिया जाने वाली है तो हर क्षेत्र में अति होगी, कोई भी काम करोगे उसमें समस्या आएगी, नौकरी करोगे उसमें समस्या आएंगी, बिजनेस करोगे उसमें समस्या आएंगी, खेती करोगे, उनके आगे तो कितनी समस्याएं आ रही हैं वो तो आप सब जानते हो। बेचारा किसान कितनी मेहनत करता है, खेत तैयार करता है, बीज बोता है, खाद डालता है, दवाई देता है बहुत महंगी महंगी, और फिर पहरा देता है, और अचानक ओला पड़ जाता है, बरसात जोर से पड़ जाती है, कीड़े आ जाते हैं, रोग लग जाते हैं, सारी फसल खत्म हो जाती है, बेचारा ऐसे ऐसे दुखी होता है। समस्याएं हैं ना, ये तो कलयुग की देन है। अब कहे क्या करूं, कैसे करूं, उलझ जाए तो बेचारा सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, जो कर्जा हो गया, इतनी महंगी महंगी दवाई ले लिया, तो समस्याएं तो कलयुग के अंदर पैदा हो रही हैं। लेकिन अगर सशक्त है, शक्तिशाली है, परमात्मा से बुद्धि योग है, उसको टचिंग आती है कि ये खेती के साथ ये भी कर लो भाई, जो नुकसान वाली है उसके साथ थोड़ी फायदे वाली भी हो जाए, तो समझदार व्यक्ति जो ज्ञानी तो आत्मा है, वर्तमान समस्याओं रूपी दुनिया में चलते हुए नॉलेजफुल अगर रहती है। वैसे भी देखो, कहते हैं श्री गणेश को विद्यापति, विघ्न विनाशक। वो विघ्न विनाशक तब बनता है जब वो विद्यापति है। विद्यापति माना नॉलेजफुल है। अगर नॉलेज की कमी है तो विघ्न ही विघ्न है। और कोई कहे मेरे आगे कोई विघ्न आए नहीं और मैं विघ्न विनाशक बन जाऊं, विघ्नों को विनाश नहीं किया तो विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? तो विघ्न अथवा समस्याएं तो हर आत्मा के सामने आएंगी, बड़े रूप में आएंगी, लेकिन जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं उन विघ्नों के सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाती, वर्णन नहीं करती। आई है बात ज्ञान और योग की शक्ति से मुझे इसको पार करना है। आ गई है, क्यों आई, कहां से आई, कैसे आई, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा के बच्चों के सामने भी आ गई, बाबा कहते हैं ज्ञान की कमी है। कोई भी आत्मा जिसने भी कुछ ऐसे कर्म विकर्म किए हैं, वो सबसे हुए हैं इस चक्र के अंदर, सतयुग त्रेता के अंदर तो कर्म अकर्म हुए, द्वापर और कलयुग के अंदर हर एक आत्मा देहमान के कारण कई प्रकार के विकर्म करती आई, पाप कर्म करती आई। अब जब किए हैं कर्म तो उसकी भोगना कहां आएगी? कलयुग के अंत में। परमात्मा कह रहे हैं ये समय ऐसा है, संगम का समय है, सबको अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, सबको वापस घर चलना है। इसलिए बातें आई, हिसाब किताब आए, जो विकर्म किए हैं वो सामने आए, लेकिन नॉलेज की शक्ति से और बाबा के साथ से। बाबा को साथी बना लो, सर्वशक्तिमान हजार भुजाओं वाले बाबा को अगर किसी ने साथी बनाया हुआ है, उसके आगे समस्या क्या है? है कोई? पहाड़ भी राई, राई भी बाबा कई बार कहते हैं वो बहुत हार्ड होती है, रुई हो जाएगा, ऐसे फूंक दोगे उड़ जाएगा। तो समस्या आ गई, समस्या आ गई, हाय हाय नहीं करना। बाबा को अपने बच्चों का हाय शब्द अच्छा नहीं लगता। कौन सा शब्द अच्छा लगता है? वाह वाह, जो कुछ हो रहा है वाह वाह है, सब बातों में कल्याण समाया हुआ है। क्यों आई, कहां से आई, कैसे आई, न सोचो न वर्णन करो, आ गई है ज्ञान योग की शक्ति से, योग के प्रयोग करो। आपको बाबा ने इतनी शक्तियां दी हैं, योग की विधियां बताई हैं, बाबा का साथ लो, बाबा के साथ स्थिर होकर के बैठ जाओ, अपने शुद्ध संकल्पों से ऐसा ओरा बनाओ, ऐसा घेरा बनाओ, जो समस्या अपने आप आई है वापस चली जाए। वार न करे समय हमारा, हमारी शक्तियों को खत्म न करे, नष्ट न करे, उसको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। अब कोई बात आ गई, फिर सोच रहे हैं, अपना भी टाइम जा रहा है और नहीं पार कर पा रहे हैं, तो बड़ों का भी टाइम ले रहे हैं, उनको भी सुना सुना करके ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो बाबा कहता है एक तो अपने लिए अपनी पर बोझ चढ़ा रहे हो, और दूसरा दूसरों का भी समय खराब कर रहे हो। क्यों ना इतने शक्तिशाली बन जाओ, जो अपनी समस्याएं तो खत्म हो जाएं, लेकिन जो आपके सामने आए, आपकी दृष्टि से, आपके बोल से, आपके आभा मंडल से, आपके वाइब्रेशन से, उसको समाधान दिखाई दे, ये परिस्थिति आई है, इसको ऐसे पार कर सकते हैं। बाबा ने अपने बच्चों को इतना ज्ञानी तो आत्मा बनाया है, समझदार बनाया है। समझदार बच्चों के पास सबसे बड़ी शक्ति है परखने की शक्ति। जिसके पास साइलेंस पावर है, ज्ञान की पावर है, वो आत्मा आने वाली समस्याओं को पहले से ही जान जाती कि होने वाला है, परख लिया, तुरंत निर्णय ले लिया, और निर्णय लेकर के उसमें कहीं सहन करना है, कहीं समाना है, कहीं सामना करना है, सहज पार हो जाएगी। बाबा ने हम सबको सर्वशक्तिमान का टाइटल दिया है, वरदान दिया है। बच्चे मैं जैसे सर्वशक्तिमान हूं, आप बच्चे मास्टर हो, मेरे भी मालिक हो, इन शक्तियों के भी मालिक हो, और मालिक बनकर के हर समय जिस शक्ति की जरूरत है ऑर्डर करो, हाजिर हो जाए। ऐसे नहीं हमारे पास है सब कुछ लेकिन समय है सहन करने का और मैं वहां पर सामना कर लूं, समय है समाने का और मैं उसका बड़ा विस्तार कर दूं, फैला दूं बात को, तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, एक के बाद एक आ जाएगी। इसलिए किस समय किस शक्ति की जरूरत है। इस समय मुझे मान लो ठंडी है, अब ठंडी के अंदर सहन करना पड़ेगा, ठंडी को वर्णन करने से क्या होगा, प्रबंध करो, उसके साधन लाओ, कुछ गर्म कपड़े रखो, हीटर हो, अपनी सेफ्टी का साधन अपने आप बनाना है। आ गई, कहां से आई, कैसे आई, मैं तो यहां फंस गया, सोच सोच करके समस्याओं को क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम सबको ज्ञान है, समझ है कि इस कलयुग के अंतिम समय में हर क्षेत्र में प्रकृति अपना प्रभाव डाल रही है, प्रकृति के पांचों तत्व अपने तमोगुण रूप से वार कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम सब ने बिगाड़ा है, अब वो अपना बदला ले रही है, कहां माइनस में जा रहा है, कितना ठंडी पड़ रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं देखो तो ज्वालामुखी फट रहे हैं और कहीं देखो तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्या होगा, सृष्टि का परिवर्तन है। हम सबको बाबा ने बता दिया है बच्चे कलयुग को जाना है और इसकी सब तैयारियां हैं, अब ये समस्याएं आएंगी और बड़े रूप में आएंगी। इसलिए ज्ञानी तु आत्माएं, समझदार आत्माएं, इनका वर्णन और चिंतन न करना, बहुत अच्छे योगी बनो और योग के प्रयोग करो। आपकी प्रसन्नता कभी भी किसी भी बात के कारण खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाबा की मुरलियां चलती हैं, कुछ भी हो जाए, हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए तो भी आपकी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। सुना है बाबा के शब्द, बच्चे आप खुश नसीब आत्माएं हो, कुछ भी हो जाए, शरीर भी छूट जाए तो भी खुशी नहीं जानी चाहिए। अगर खुशी खुशी से शरीर छोड़ोगे तो अगला शरीर और अच्छा मिलेगा, हाय हाय करके छोड़ोगे तो पता नहीं कहां भटक जाओगे। इसलिए ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई, मैं क्या करूं, कोई के आगे धन की समस्या है, कोई के आगे साधनों की समस्या है, कोई के आगे संबंधों की समस्या है, कोई के आगे संस्कारों की समस्या है। अब वो समस्याओं के नीचे कोई तो दबे हुए हैं और बाबा के बच्चे समस्याओं को कुचल करके ऊपर उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहता हाय हाय नहीं करो, फ्लाई करो, उड़ो। अब फ्लाई करने का समय है, उड़ने का समय है, इनका सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाना। जैसे चलते रास्ते में नदी हो, पहाड़ हो, बड़े बड़े जंगल हो, गाड़ी से जाओगे कहीं हाथी का झुंड आ गया, कहीं कोई विघ्न आ गया, कहीं कोई विघ्न आ गया, समस्या आ गई, अब उसको समाप्त पार करने में मेहनत लगेगी। लेकिन जो उड़ने वाला है ऊपर से उड़ करके इधर से उड़ा उधर पहुंच गया जाकर के। बाबा इस संगम के अंतिम समय में बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे अभी चलने का, दौड़ने का, जंप देने का समय पूरा हो गया, अभी उड़ने का समय है, अभी अपने विचारों से एकदम इन बातों को चिंतन करने की बजाय अपनी ऊंची स्थिति से पार कर दो। उड़ना माना क्या, शरीर से नहीं उड़ने लगना, मन से भी कहीं उड़ के नहीं जाती आत्मा, लेकिन अपने शुद्ध श्रेष्ठ विचारों से बाबा के साथ रह करके इन बातों की बिना परवाह किए हुए बाबा का साथ ले और इधर से उधर संकल्प से पार हो जाओ। संकल्प अगर शक्तिशाली है तो आत्मा समाधान स्वरूप है, बोल अगर बहुत समर्थ और श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, शुभ हैं, तो समस्याएं आती नहीं है। जिस सेंटर पर समस्याएं आती ना उसका कारण बताऊं क्या है, कम साधारण बोल। जिस परिवार में रोड टकराव होते हैं उसका कारण क्या है, बोल दिया, निकल गया, सोचा नहीं था, निकल गया, क्या करूं। बाबा कहता है समस्याओं को जन्म दे दिया तुमने, इसलिए ध्यान देना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मानजनक बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, नहीं तो ये बोल समस्याओं को जन्म देंगे। अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं, टकराव पैदा होते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं, घरों में दो बहुएं आ गई तो अलग चूल्हे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, बोल पर कंट्रोल नहीं है, वो समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए समस्याएं तो कलयुग में आ रही हैं, आएंगी, हम बच्चे अपनी इतनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बना लें जो परिस्थितियां अथवा समस्याएं सब नीचे रह जाएं और हम मूर्ति कला से पार हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आप सब आए हो। बहुत अच्छी तपस्या करो, ज्ञान और योग से अपने आप को भरपूर करो और बाबा आपको इतनी शक्ति दे, बाबा को ऐसा साथी बनाना जो सब समस्याओं का समाधान हो जाए। ओके, ओम शांति।